का था, रूह वही रूप नया।
रक्त मंडल के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह गोपाल शंकर ने नगेंद्र नरसिंह के आदमियों को चकमा देकर उनकी आंखों में धूल झोंक दी और मृत्यु किरण के बक्से को बदल दिया, साथ ही उनके पीछे अपने एक खास नौकर मुरारी को लगा दिया। मगर नगेंद्र नरसिंह ने हार नहीं मानी और अभी भी वो मृत्यु किरण के बक्से के पीछे लगे रहे। आगे का हाल जानने के लिए सुनिए अगला भाग। पंडित गोपाल शंकर कपड़े पहनकर कहीं जाने को तैयार थे कि उसी समय तारपियों ने एक तार लाकर उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने खोलकर उसे पढ़ा। तार काशी जी से आया था और भेजने वाले वहां के सुपरिटेंडेंट मिस्टर कैमल थे। तार का मजमून ये था, रोज गायब है, कहीं पता नहीं लगता, इसकी जान को खतरा मालूम होता है, कृपा करके तार देखते ही आइए और मदद कीजिए, कैमल। तार पढ़ते ही गोपाल शंकर बेचैन हो गए। मिस्टर कैमल की लड़की मिस रोज से उनकी बहुत अधिक घनिष्ठता थी और कुछ दिनों से वो घनिष्ठता प्रेम के रूप में परिणत होती दिख रही थी, पर यह प्रेम अभी तक दोनों दिलों के अत्यंत गहरे पर्दे के भीतर ही छुपा हुआ था और किसी पर, यहां तक कि एक दूसरे पर भी प्रकट नहीं किया गया था। फिर भी प्रेम एक ऐसा पदार्थ है कि चाहे कितना ही गुप्त और कितने ही प्रयत्न से छिपा कर रखा गया हो, परंतु प्रेमी पर आने वाली मुसीबत को सुनकर लगने वाला जबरदस्त धक्का उसे प्रकट कर ही देता है। तार वाला तो तार देकर चला गया, मगर गोपाल शंकर तार का मजमून पढ़ने के बाद उसी जगह पर उस कुर्सी पर फिर बैठ गए और तरह तरह की बातें सोचने लगे। न जाने कब तक वो इसी तरह बैठे रहे, मगर घड़ी के बजने ने उन्हें चैतन्य कर दिया और उन्हें ख्याल आया कि लाट साहब से मिलने जाने का समय हो गया है। उन्होंने कोशिश करके अपने को चिंता सागर से निकाला और मुरारी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में मुरारी वहां मौजूद हो गया। गोपाल शंकर ने कहा, मैं लाट साहब से मिलने जा रहा हूँ और वहाँ से आते ही काशी जी के लिए रवाना होऊंगा। तुम मेरा संदूक वगैरह तैयार रखो और बाकी का सामान भी दुरुस्त कर डालो। अब शायद तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो वो अपने साथ ले जाना चाहते थे मुरारी को बताकर गोपाल शंकर उठे और जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय फोन की घंटी बजी और सुनने पर मालूम हुआ कि लाट साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी दरियाफ्त कर रहे हैं कि क्या पंडित गोपाल शंकर घर से रवाना हो चुके हैं। गोपाल शंकर ने जवाब दिया, एक जरूरी तार आ जाने के सबब से मुझे कुछ मिनटों की देरी हो गई है, मैं अभी आता हूँ। जहां तक हो सके जल्दी आइए, यहाँ एक विचित्र घटना घट गई है, ये जवाब मिला। गोपाल शंकर ने उत्सुकता से पूछा, क्या क्या हुआ? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मिस्टर वाहिद अली और कोतवाल अभी यहाँ पहुंचे हैं। आपसे वो मॉडल लेकर रवाना होने के बाद वे लोग अब तक कहाँ रहे या क्या करते रहे, ये इन सभी को कुछ याद नहीं आ रहा है और न ही वो मॉडल उनके साथ है। सुनकर गोपाल शंकर ने जोर का हॉट टेबल पर मारा और कहा, ओफो, ये मूर्ख पुलिस अफसर। पर यकायक रुक गए। सेक्रेटरी से कुछ बातें करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। इसके बाद वो अपनी लेबोरेटरी में गए और वहां से कोई सामान लेकर बाहर आए, दरवाजे पर दोहरा ताला बंद किया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर रवाना हो गए। रात के कोई 9:45 बजे होंगे। गोपाल शंकर अभी तक लौट कर नहीं आए थे, इसलिए मुरारी ड्रॉइंग रूम के सामने वाले बरामदे में बैठा उनकी राह देख रहा था। सिर्फ 2 या 4 नौकर इधर उधर काम करते दिखाई पड़ रहे थे। बाकी के सब काम समाप्त करके बाग की चहार दीवारी के साथ बनी हुई उस इमारत में चले गए थे जो खासकर नौकरों के लिए गोपाल शंकर ने बनवा रखी थी। बाग के फाटक पर 2 पहरेदार मौजूद थे और 4 आदमी उस बड़े बाग और इमारत के इधर उधर घूमकर चौकसी कर रहे थे। जब से रक्तमंडल का उत्पात शुरू हुआ है, गोपाल शंकर ने पहरेदारी बढ़ा दी है और अपने बंगले की हिफाजत का बहुत ख्याल रखने लगे हैं। मुरारी गोपाल शंकर का सिर्फ नौकर नहीं था, बल्कि बहुत से कामों में उनका चालाक और होशियार जासूस भी था। विज्ञान से भी उसे बहुत शौक था और गोपाल शंकर के वैज्ञानिक आविष्कारों से पूरी दिलचस्पी रखता था तथा उनके साथ काम करना भी बखूबी जानता था। गोपाल शंकर से भी वो बहुत प्रेम करता था, लड़कपन से ही उनके साथ था। और जब भी कभी वे हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की सैर करने जाते तो उसे जरूर साथ रखते। अब थोड़ी बहुत कुछ भाषाओं में मुरारी को अच्छा दखल भी है। इस समय मुरारी के हाथ में कोई उपन्यास या किस्से की किताब नहीं थी जिसे वो बड़े शौक से बिजली की रोशनी में दीवार के साथ उंडगा हुआ पढ़ रहा था। अरे, ये एक वैज्ञानिक पुस्तक थी जिसमें बिजली के द्वारा होने वाले आश्चर्यजनक कामों और उनके विचित्र अद्भुत यंत्रों का हाल दिया गया था। अचानक मुरारी के कानों में किसी तरह की आहट पड़ी। आवाज किस प्रकार की थी इसे तो वो नहीं समझ सका, पर रुख पर ध्यान देने पर इतना जरूर जान गया कि ये ऊपर की मंजिल से आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि कोई नौकर उठा होगा और कुछ कर रहा होगा, पर फिर भी उसका मन नहीं माना और जांच करने के लिए वो उठ खड़ा हुआ। किताब उसने उसी जगह रख दी और धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियां तय करके ऊपर के मंजिल पर पहुंचा। सीढ़ी के मुहाने पर पहुंचकर रुक गया। यहां भी नीचे की मंजिल की तरह सामने बरामदा था और कई कमरे थे। साधारण रीति से रात को 10 बजे के बाद इस बरामदे में सिर्फ एक बिजली की बत्ती जलती रहती है, लेकिन वो इस समय बुझी हुई थी और घोर अंधकार था। इस बात ने मुरारी को आश्चर्य में डाल दिया और वो वहीं रुक गया। जो आहट मुरारी के कानों में पहुंची थी वो इस समय बंद हो गई थी और वहां एकदम सन्नाटा था। मगर कुछ ही देर बाद वो आवाज फिर शुरू हो गई और इस बार मुरारी को मालूम हुआ कि यह उस तरफ से आ रही है जिस तरफ लेबोरेटरी है। ये जानते ही मुरारी चौकन्ना हो गया। उसे दुश्मनों का ख्याल आया, संदेह हो गया कि शायद बदमाश लोग उसके मालिक की लेबोरेटरी में घुसकर कुछ कर रहे हैं। अब वो एक शायद भी वहां नहीं रुक सका, दबे पांव आगे बढ़ा और उस तरफ चला जिस तरफ लेबोरेटरी थी। इस तरफ भी अंधेरा था, मगर रोज का परिचित होने के कारण मुरारी को यहां तक आने में कोई तरद्दुद ना हुआ। कुछ ही देर में वो लेबोरेटरी के दरवाजे पर जा पहुंचा और कपड़ा टांगने वाले एक स्टैंड की आड़ में खड़ा होकर गौर से चारों तरफ देखने लगा। पहले तो अंधेरे के सबब में कुछ मालूम ना हुआ, पर जब निगाह जमी तो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा और मालूम हो गया कि लेबोरेटरी के दरवाजे के सामने कोई घुटना टेके हुए बैठा है। मुरारी हालांकि बहुत ही दबे पांव और आहिस्ता आया था, फिर भी एक आदमी को उसकी आहट लग गई और वो अपना हाथ रोककर पीछे की तरफ चारों ओर देखने लगा। या तो उसने मुरारी को आते देख लिया था या उसे किसी और बात का शक हो गया था, जिससे उसने अपना काम छोड़ दिया और जमीन पर से कोई चीज उठा जो शायद एक बैग था, मकान की पिछली तरफ लपका। मुरारी ने देखा कि शिकार भागा जा रहा है। उसके सिर के पीछे ही बिजली की बत्ती का बटन है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे दबाया जिससे सारे बरामदे में तेज रोशनी फैल गई। तब उसने आड़ से निकलकर कड़क कर कहा, कौन है, कौन खड़ा है वहां? जाने वाले ने एक दफे पीछे घूमकर देखा और अपनी चाल तेज कर दी। एक क्षण के लिए उसका हाथ कपड़ों के अंदर गया और तब एक चमकदार चीज उसके हाथों में दिखाई देने लगी, जिसे देखते ही मुरारी ने समझ लिया कि यह कोई हथियार है। पर वो कम हिम्मत का नहीं था कि मामूली हथियार देखकर डर जाता। वो अपनी जगह से झपटा और दौड़कर उसके पास पहुंचा। साथ ही उसने जेब से एक सीटी निकालकर जोर से बजाई। भागने वाले ने दौड़कर निकल जाना चाहा, पर फिर न जाने क्या सोचकर वो रुक गया और घूम गया। उसके हाथ में एक खुखड़ी थी जिसे दिखाकर उसने कहा, बस खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़े तो। इस आदमी ने चेहरे पर नकाब डाली हुई थी और आवाज पर गौर करने से मालूम पड़ता था मानो वो आवाजें बदल कर बात कर रहा हो। उसके हाथ का शस्त्र भयानक था। मुरारी ने उसे कुछ करने का मौका देना उचित न समझा और एकदम उस पर झपट कर गुथ गया। एक हाथ से उसने उसकी कलाई पकड़ ली जिसमें वो खुखड़ी थी और दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल दिया। वो आदमी भी उससे घुस गया और जबरदस्त कुश्ती होने लगी। मुरारी का बदन मजबूत था और उसे अपनी ताकत पर घमंड भी था, मगर उसने अपने प्रतिद्वंदी को अपने से बहुत मजबूत पाया। दो ही चार मिनट के बाद मुरारी जमीन पर गिरा दिया गया और दुश्मन का खुखड़ी वाला हाथ ऊंचा हुआ। करीब ही था कि वो भयानक हथियार मुरारी की गर्दन को अलग कर देता और उसकी छाती में घुप जाता कि उसकी ऊपर उठी हुई कलाई को पीछे से एकदम से किसी मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। चौंक कर उस आदमी ने सिर घुमा कर देखा और गोपाल शंकर को खड़ा पाया, जो न जाने कब और किधर से उसके पीछे आ पहुंचे थे। उसने झटका देकर हाथ छुड़ा लेना चाहा, मगर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वो लोहे के पंजे में जकड़ लिया गया हो। अब गोपाल शंकर ने धीरे धीरे उसके हाथ को ऐंठना शुरू किया, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐंठा कि वो दर्द के मारे चिल्लाकर मुरारी पर से खड़ा हो गया। उसी समय मुरारी भी खड़ा हुआ और दोनों ने मिलकर बहुत जल्द ही उसे काबू में पा लिया। मुरारी कहीं से एक रस्सी ले आया जिससे उसके हाथ और पैर कसकर बांध दिए गए। नकाब उठाकर गोपाल शंकर ने बड़े गौर से उसकी सूरत देखी पर उसे पहचान ना सके। आखिर बोले, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या करने आए थे? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं चोर हूं, चोरी करने आया था। गोपाल शंकर ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, तुम मामूली चोर मालूम नहीं होते, सच सच बताओ कि तुम कौन हो। वो बोला, आपको अख्तियार है, जो चाहे समझ ले। उसी समय गोपाल शंकर की निगाह चमड़े के एक बैग पर पड़ी जो उसी जगह पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे उठा लिया और खोला। तरह तरह के ताले खोलने, सेफ तोड़ने, शीशा और लोहा काटने, छेद करने के औजार उसमें पड़े हुए थे, जिनमें से कई बिजली से चलने वाले भी थे। उन्हीं के साथ एक पुर्जा भी पड़ा था जिसे गोपाल शंकर ने निकाल लिया और पढ़ा, 67 AG। गोपाल शंकर की लेबोरेटरी की सेफ में कुछ फोटो के प्लेट हैं, उन्हें आज ही लाना होगा। आज 12 बजे रात के पहले वो घर न लौटेंगे, उसके पहले ही उन प्लेटों को कब्जे में करो और ठिकाने पहुंचाओ। नीचे रक्त मंडल का प्रसिद्ध खून का निशान था, जिसे देखते ही गोपाल शंकर सब मामला समझ गए। जेब से तालियों का गुच्छा निकालकर उन्होंने मुरारी को दिया और कहा, इसे 33 नंबर की कोठरी में बंद कर दो और एक पहरेदार वहां मुकर्रर कर दो जिससे ये भागने ना पावे। बिजली का कनेक्शन लोहे की छड़ों के साथ कर देना, ये बहुत भयानक आदमी है। मुरारी ताली का गुच्छा और उस आदमी को साथ लिए नीचे चला गया और गोपाल शंकर अपनी लेबोरेटरी के पास पहुंचे। उस समय उन्हें मालूम हुआ कि किसी तेज औजार से दरवाजे का वो हिस्सा जहां दोहरा ताला लगा था काट डाला गया है। तीन तरफ से वो कट चुका था और सिर्फ एक जगह थोड़ा सा लगा हुआ था जिसके कटते ही दरवाजा खुल जाता। वे समझ गए कि आदमी इसी काम में लगा था जब मुरारी ने उसके काम में बाधा डाल दी। उन्होंने काशी जाने का विचार छोड़ अपनी लेबोरेटरी को मजबूत करने का इंतजाम किया, बल्कि रात उसी कमरे में काटी और दूसरे दिन सवेरे ही कारीगरों को बुलाकर लेबोरेटरी के सब दरवाजों और खिड़कियों में लोहे के मोटे छड़ों वाले दोहरे दरवाजों का इंतजाम किया। सूर्योदय में अभी एक घंटे का विलंब था। सरकार के मैकेनिकल एडवाइजर और बेतार के तार के एक्सपर्ट कप्तान रूबी गहरी नींद में मस्त थे और उनकी नाक से खर्रांटों की आवाज बराबर निकल रही थी। न जाने कब तक वे पड़े रहते, मगर एक खान सामे ने डरते डरते उनके पलंग के पास जाकर उन्हें जगाया और कहा, हुजूर हुजूर उठिए, टेलीफोन आया है। एक करवट बदल कर कप्तान रूबी ने आंखें खोली और पूछा, क्या बात है? खान सामे ने कहा, ज़रूरी टेलीफोन है हुजूर। उन्होंने पूछा, किसका टेलीफोन है? पंडित गोपाल शंकर का। गोपाल शंकर का नाम सुनते ही वो चौंक पड़े और उठ बैठे। रात के कपड़े बदलने की परवाह किए बगैर वो उस कमरे में जा पहुंचे जहां टेलीफोन था। खान सामा दरवाजे पर ही खड़ा हो गया, जिसे इशारे से उन्होंने दूर जाने को कहा और तब टेलीफोन पर बोले, हु इज दिस? जवाब आया, मैं हूं गोपाल शंकर, क्या आप कैप्टन रूबी हैं? यस, व्हाट इज इट? दोनों ने टेलीफोन पर बातचीत की। कल जो मुझे शक हुआ था वो ठीक निकला। व्हाट? रक्त मंडल को पता लग गया है कि मैंने उस मॉडल और उन कागजों के फोटो उतार लिए हैं जिन्हें वाहिद अली खां को धोखा देके वो लोग ले गए थे। व्हाट? मालूम हो गया? हाउ? हाँ, उनका एक आदमी मेरी लेबोरेटरी का दरवाजा काटने के लिए आया था, जिसके पास एक कागज भी था और इसमें इस बात का जिक्र था। वेयर इज दैट मैन? मेरे कब्जे में है। सुनो, उसको मार पीट कर उससे कुछ पता लगाने की कोशिश करो, आप क्या समझते हैं कि रक्तमंडल के जासूस मार पीट धमकी सजा से डरकर सब कुछ बता देंगे? कभी नहीं। मगर मैंने इसके लिए एक दूर की तरकीब सोची है। Tell me, आपसे कल मैंने अपने उस यंत्र का जिक्र किया था जो मनुष्य के मनोभावों का चित्र उतारता है। मैं उसी को काम में लाना और देखना चाहता हूं कि इसमें मुझे सफलता कहां तक मिलती है। Okay, yes, you told me. So, आप जिस समय उस मशीन को टेस्ट करेंगे मुझे जरूर बुलाइएगा। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं उसे देखना चाहता हूं। यही नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आप खुद ही उस यंत्र का इम्तिहान लीजिए। मुझे 2 घंटे के भीतर ही बनारस के लिए रवाना होना है, जहां मेरे दोस्त कैमल बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। इसलिए मुझे उस यंत्र से काम लेने का मौका नहीं मिलेगा, और इस बात का भी कुछ ठीक पता नहीं कि कब लौटूं। देर होने से पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी गैर हाजिरी में आप ही उस यंत्र से काम लें और देखें कि आपको कहां तक सफलता मिलती है। ऑफ कोर्स, मैं खुशी से वो काम करूंगा। मगर आपने क्या बताया कि मिस्टर कैमल प्रॉब्लम में है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? उनकी लड़की रोज कहीं गायब हो गई है। उसकी जान का अंदेशा किया जा रहा है। रक्त मंडल ने इस चीज पर कार्यवाही की है। मिस्टर कैमल का कल एक तार मिला था मुझे, जिसमें उन्होंने मुझे तुरंत आने के लिए कहा था, इसलिए मैं थोड़ी ही देर में बनारस के लिए रवाना हो रहा हूं। ओके, तो फिर जाइए और उनको कहिएगा मुझे बहुत अफसोस है। इफ आई कैन हेल्प इन एनी वे, डू लेट मी नो। मुझे वहां के हालचाल देते रहिएगा। और आपकी मशीन, क्या मैं उसको छड़ा पाऊंगा? हाँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। मैं उसके सब भेद आधे घंटे में आपको समझा दूंगा। अगर आप इसी समय आ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, आई विल रीच टू यू विद इन एन आवर। अच्छी बात है। और आते समय मिस्टर डगलस से रास्ते में मिलकर इस आदमी के बारे में भी बता दीजिएगा कि वे इसे कैदी की तरह अपने पास रखना चाहते हैं या इसका कोई और प्रबंध करना चाहते हैं। ध्यान रहे, होशियार रहिएगा, और जब चाहें तब मुझे फोन करके इत्तला करते रहिएगा। ऑलराइट, आई विल मीट द कलेक्टर एंड आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस। बातचीत खत्म हुई, टेलीफोन टांग दिया गया। कैप्टन रूबी खड़े हो गए, और उन्हें इस बात की खबर तक ना हुई कि पास की ही एक खिड़की के बाहर खड़े होकर उनका खान सामा उनकी सब बातें सुन रहा था। जैसा कि उन्होंने वादा किया था, आधे घंटे के अंदर ही कैप्टन रूबी गोपाल शंकर के बंगले पर पहुंच गए। गोपाल शंकर अपनी लेबोरेटरी के दरवाजे और खिड़कियां मजबूत करने का प्रबंध कर रहे थे। जब इनके आने की खबर उन्हें मिली तो वे नीचे आकर आदर के साथ उनसे मिले, और तब उन्हें अपनी लेबोरेटरी में ले गए, और जहां टेबल पर उन्होंने एक विचित्र तरह का यंत्र रखा हुआ था। यही मनोभावों का चित्र उतारने वाला गोपाल शंकर का यंत्र था जिसका उन्होंने जिक्र किया था। गोपाल शंकर उस यंत्र का भेद कैप्टन रूबी को समझाने लगे। लगभग 1.5 घंटे तक दोनों वैज्ञानिकों में बातचीत होती रही। सच तो यह है कि गुणी की कदर गुणी ही जानता है। जब कप्तान रूबी उस यंत्र के सब कलपुर्जों को अच्छी तरह समझ गए तो उन्होंने प्रेम के साथ गोपाल शंकर का हाथ दबाया और कहा, पंडित जी, आपके दिमाग और इंटेलिजेंस की मैं कद्र करता हूं। मैं बहुत सारे कंट्रीज में घूम कर आया। यूरोप एंड अमेरिका में मोस्टली ऑल द साइंटिस्ट्स आई नो, बट दे डोंट हैव इंटेलिजेंस लाइक यू। मैं तो आपके दिमाग की तारीफ भी नहीं कर सकता। दोनों आदमियों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती रही, और इसके बाद कप्तान रूबी विदा हो गए। उनके साथ एक आदमी वो यंत्र लिए हुए था, और 2 कांस्टेबल हथकड़ी पहने उस आदमी को लिए, जिसको कल रात गोपाल शंकर ने गिरफ्तार किया था, साथ ले गए। कप्तान रूबी के जाने के बाद गोपाल शंकर ने मुरारी को बुलाया और कहा, मैं चाहता था कि तुम्हें भी अपने साथ ले जाता, पर रक्तमंडल की कार्यवाहियों को देख मुझे ख्याल होता है कि मेरे पीछे किसी होशियार आदमी को यहां रहना चाहिए जो बंगले की हिफाजत रखे। इसलिए तुम्हें छोड़े जाता हूँ मुरारी। तुम खूब चौकसी रखना और सब जगह की, खासकर मेरी लेबोरेटरी की। मुझे संदेह है कि मेरे पीछे दुश्मन लोग जरूर कुछ ना कुछ आफत करेंगे, मगर तुम होशियार रहना और उनका पूरी तरह से मुकाबला करना। तुम्हारे यहाँ रहने से मैं निश्चिंत रहूँगा। लेबोरेटरी की हिफाजत के लिए रात भर में मैंने कुछ सामान इकट्ठे किए हैं, उनके बारे में तुम्हें समझाए देता हूँ। उनके रहते किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो इसके भीतर झांक सके। फिर भी अगर कोई तरद्दुद पड़े तो सीधे कलेक्टर मिस्टर डगलस के पास चले जाना, वो कुछ ना कुछ मुनासिब इंतज़ाम कर देंगे, मैंने बात कर ली है। गोपाल शंकर ने मुरारी को बहुत सी बातें समझाईं और इसके बाद काशी जाने के लिए तैयार होने लगे। 2 घंटे के बाद वे वहां से रवाना हो गए। उनके साथ बहुत ही मुख्तसर सा सामान था और आदमी या नौकर कोई भी नहीं था। मिस्टर कैमल को शायद हमारे सुनने वाले भूले ना होंगे। ये पहले आगरा के पुलिस सुपरिटेंडेंट थे और अब बदलकर काशी आ गए थे। इनके पहले ही सुपरिटेंडेंट मिस्टर गिब्सन के समय में बनारस में रक्त मंडल ने जो कार्यवाहियां की थीं, उनकी भीषणता और अपराधियों का कुछ भी पता न लगने के कारण ऊंचे अफसर मिस्टर गिब्सन से कुछ असंतुष्ट हो गए थे और इसी सबब से वे बनारस से बदलकर एक छोटे से और अपेक्षाकृत कम महत्व के शहर में भेज दिए गए। मिस्टर कैमल जब से यहां आए थे तब से ऐसी घटनाओं का होना बंद हो गया था, पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कारण उनकी होशियारी या चालाकी थी या फिर रक्त मंडल का ध्यान दूसरी तरफ हो गया था। परंतु ये शांति के कुछ ही दिनों के पल थे और अंत में स्वयं मिस्टर कैमल को ही कुचक्रियों के भीषण षड्यंत्र में फंस जाना पड़ा था। शाम का समय था, गर्मी की भीषणता से व्याकुल होकर मिस्टर कैमल, उनकी पत्नी और लड़की मोटर बोट पर चढ़कर गंगा जी की सैर करने निकले थे। पूर्णमासी का दिन था और जल पर पूर्ण चंद्र की शोभा देखने की सभी की इच्छा थी। रोज के हाथ में दूरबीन थी जिससे वो चारों तरफ के दृश्य देखती और उन पर तरह तरह की टिप्पणियां करती जा रही थी। यकायक उसने कहा, मॉम, लुक दैट मोटर बोट कमिंग टू अस। वो हमारी तरफ आ रही है, इट्स टू फास्ट। रोज ने माँ के हाथ में दूरबीन दी और उसने देख कर कहा, सच अ ब्यूटिफुल बोट बट इट्स स्लोअर नाउ, आई थिंक इट हैज बीन डैमेज्ड और समथिंग। घूमती हुई दूरबीन मिस्टर कैमल के हाथ में आ गई और उन्होंने भी उस बोट को देखा जिसका इंजन बंद हो गया था पर जो फिर भी तेजी से पानी को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। यकायक कैमल ने देखा कि बोट के पिछले हिस्से में 3-4 बरस का एक सुंदर सा लड़का खड़ा हुआ था और इनकी नाव की तरफ देख रहा था। उसी समय तेजी से अचानक उस बोट का इंजन, जो न जाने क्यों रुक गया था, चल पड़ा और बोट तेजी से आगे बढ़ी। एक कड़ा झटका लगा और झोंके को बर्दाश्त न कर सकने के कारण वो छोटा लड़का पानी में गिर पड़ा। मिस्टर कैमल के मुंह से निकला, ओ माय गॉड, द बॉय, द बॉय। उन्होंने दूरबीन रख के जोर जोर से अपनी बोट का भोंपू बजाना शुरू किया जिसमें बोट वालों का ध्यान आकर्षित हो, पर वे बोट वाले ना जाने किस काम में मग्न थे कि किसी ने कुछ ख्याल ही ना किया और लड़के को उसी तरह पानी में छोड़ नाव आगे बढ़ गई। मिस्टर कैमल की नाव उस नाव से लगभग 5 या 6 फरलांग की दूरी पर थी जब यह घटना घटी। इस घटना को देखते ही उन्होंने अपना इंजन तेज किया और उस तरफ बढ़े जहां लड़का पानी में गिरा था। उनकी स्त्री दूरबीन हाथ में लिए उस लड़के पर निगाह जमाए हुई थी जो एक बार डूब कर अब फिर उतरा आया था और पानी पर हाथ पैर मार रहा था। अब उस अगली नाव वालों का ध्यान भी इस दुर्घटना की तरफ गया। एक आदमी पीछे की तरफ आया और झांक कर देखने लगा, नाव का मुंह घुमा और एक शायद के लिए ऐसा मालूम हुआ मानो वो लौटेगी और उस बेचारे लड़के को उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या जाने कैमल साहब की बोट देखकर या न जाने किस कारण से उस नाव ने अपना मुंह फिर सीधा कर लिया और पहले से भी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ गई। लड़का पीछे छूट गया, पर इसी समय मिस्टर कैमल की नाव उस लड़के के पास पहुंच गई। कैमल जल में कूद पड़े और तेजी से उस लड़के के पास पहुंचकर उन्होंने उसे उठा लिया जो अब की शायद आखिरी दफे पानी के अंदर जा रहा था। उनकी स्त्री मोटर बोट घुमाकर पास ले आई और सभी ने लड़के को पकड़ा और फिर मिस्टर कैमिल को सहारा देकर नाव पर चढ़ा लिया। लड़का यद्यपि पानी काफी पी गया था पर फिर भी होश में था। मिसेस कैमिल ने उसके कपड़े बदल कर अपना कोई कपड़ा उसे उठाया और हाथ पांव मल कर उसके बदन को गर्म किया। कैमिल साहब ने भी गीले कपड़े उतारे। उस बीच में उस अगले बोट पर से इन सभी का ध्यान हट गया, पर अब जो देखा तो वो बहुत दूर जा पहुंचा था और फिर भी आगे ही बढ़ता जा रहा था। रोज ये देख कर बोली, Who are these people who left this boy in the water? How ridiculous! कैमिल साहब बोले, Even I wonder. मिसेस कैमिल बोली, Perhaps they did not see the boy. इस पर रोज बोली, What? But still, they should stop and check. अब तक दोनों नावों के बीच में कोई आधे मील का फासला पड़ चुका था। मिस्टर कैमिल ने अपनी नाव की चाल तेज कर दी और चाहा कि उस नाव के पास पहुंच लड़का उन लोगों के हवाले कर दें और ये भी दरियाफ्त करें कि उसे इस बेदर्दी के साथ पानी में छोड़कर भागने का क्या सबब था। पर उनकी ये इच्छा भी पूरी न हुई। उनकी नाव की चाल तेज होने के साथ ही अगली नाव की चाल भी तेज होती दिखाई पड़ी और वो पहले से भी ज्यादा तेजी से पानी काटने लगी थी। कैमिल साहब ने ये देख कर कहा,
There is something wrong. That they don't want this boy, or they are scared of us.
ये बात मुंह से निकलने के साथ ही उनको कुछ और ख्याल आया और वे एक दूसरी ही बात सोचने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने बोट का मुंह घुमाया और घर की तरफ लौटे। चलिए अब सुनने वालों को उस अगली मोटर बोट की तरफ ले चलते हैं। इस बोट में दो आदमी थे। इनमें से एक तो इंजन के पास था और दूसरा आगे के हिस्से में खड़ा बड़ी ही चिंता की आंखों से कुछ देख रहा था। नाव में तरह तरह के सामान भरे हुए थे, बहुत सी छोटी छोटी गठरियाँ, कुछ चमड़े के बैग, कई ट्रंक और इस तरह की चीज़ें जो बतला रही थीं मानो किसी रईस का सामान जा रहा हो। इंजन अपनी पूरी गति से चल रहा था और नाव पानी को काटती हुई तीर की तरह जा रही थी। काफी देर बाद आगे वाले आदमी ने ये कहकर सन्नाटे को तोड़ा,
मुकुंद अब क्या हो? सरदार जब लड़के का हाल सुनेंगे तो क्या कहेंगे?
इंजन के पास खड़ा आदमी बोला,
कहेंगे क्या, पूरी दुर्दशा होगी। न जाने क्या सोच समझकर उन्होंने ये सब सामान और उस लड़के को अपने पास मंगवाया। लड़के के चले जाने से उनकी कार्यवाही में कितना विघ्न पड़ेगा ये कौन कह सकता है। असल में रामू तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो लौट कर उसे उठा कर नहीं लेके आए।
अरे गलती क्या की, केमिल की बोट सिर पर आ रही थी। हम लोग लड़का उठाने के लिए लौटते तो जरूर उनसे बातें होती, सवाल जवाब होते, एक इसका लड़का है कौन है पूछने पे हम क्या बताते। उनसे और बटुकचंद से सुनते हैं जान पहचान भी है। अगर उन्होंने पहचान लिया कि बटुकचंद का ही खोया हुआ लड़का है तो क्या होता सोचो।
मुकुंद ने इसका जवाब कुछ नहीं दिया क्योंकि इस जगह गंगा जी का रुख घूम गया था और तरखा बहुत तेज था जिससे वो नाव संभालने में लग गया था। यकायक सामने की तरफ आकाश में हरे रंग की एक ऐसी चमक दिखाई पड़ी जैसे कि कोई आकाश बाण छोड़ा गया हो। देखते ही रामू चौंक पड़ा और बोला,
देखो देखो शायद सरदार बुला रहे हैं।
मुकुंद ने कहा,
हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, तुम भी एक बाण छोड़ो।
जवाब में रामू ने एक बाण छोड़ा और थोड़ी देर बाद सामने से दो बाण छूटते हुए दिखाई पड़े। बोट की चाल तेज हो गई और थोड़ी देर बाद बीच गंगा में खड़े एक बड़े बजड़े की धुंधली शक्ल दिखाई पड़ने लगी। कुछ ही देर में ये बोट उस बजड़े के पास जा पहुंची और उसके साथ जा लगी। बजड़े पर बहुत से मल्लाह दिखाई पड़ रहे थे जिन्होंने बोट को रस्सी से बांध दिया और कुछ इस बोट पर भी चले आए। रामू और मुकुंद बजड़े पर चढ़े और कुछ ही देर बाद भीतर बुला लिए गए। ये बजड़ा जितना ऊंचा लंबा और आरामदेह था उतना ही तेज जाने वाला भी मालूम होता था और इस पर तीन पालों के लगने के मस्तूल भी दिखाई पड़ रहे थे। अगला हिस्सा तो इस प्रकार का था कि लगभग 40 मल्लाह वहां बैठकर उसे खेल सकते थे और पीछे की तरफ वक्त पर मदद करने के लिए पंखी और एक छोटा सा इंजन भी लगा हुआ था। इसके भीतर मल्लाहों के रहने की जगह के अलावा छोटे बड़े कई कमरे थे जो भिन्न भिन्न कामों में लाए जाते थे। और इन्हीं में से एक में बिछे पलंग पर गांव तकिए के सहारे लेटे और सिरहाने के टेबल पर रखे लैम्प की रोशनी में कुछ पढ़ते हुए एक नौजवान के सामने रामू और मुकुंद पहुंचाए गए, जो उसे सलाम कर अदब से खड़े हो गए। नौजवान ने इन लोगों की तरफ सिर उठाकर देखा और पूछा, तो तुम लोग आ गए? मुकुंद ने जवाब दिया,
जी हाँ, मगर।
मगर क्या? मुकुंद ने यह सुन रास्ते में जो कुछ भी हुआ सब पूरा पूरा हाल कह सुनाया और अंत में यह भी कहा,
केमिल साहब ने थोड़ी देर के लिए हम लोगों का पीछा किया मगर फिर लौट गए।
मुकुंद की बात सुन नौजवान कुछ देर के लिए चिंता में पड़ गया। मुकुंद और रामू धड़कते कलेजे के साथ सोच रहे थे कि देखें अब उन्हें क्या सजा मिलती है, मगर ऐसा कुछ ना हुआ और थोड़ी देर बाद नौजवान ने कहा, तुम लोगों से गलती तो बड़ी भारी हो गई कि उसी समय लौट कर उस लड़के को ना उठा लिया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। जो कुछ सामान उस मकान से लाए हो उसे इस बजड़े पर पहुंचा दो और इसके बाद इसी समय उस बोट को बीच गंगा में डुबाओ। बजड़े को हुक्म दो कि ऊपर की तरफ चले, घंटा भर दिन चढ़ने से पहले अड्डे पर पहुंच जाना है। अब मैं सोता हूं, रात में कोई मुझे तंग ना करे।
जी, जो हुक्म।
सलाम
कहकर दोनों आदमी सामने से हट गए। नौजवान के हुक्म की पूरी तामील की गई, मोटरबोट का सब सामान बजड़े पर पहुंचाया गया और तब वो डुबो दी गई। इसके बाद बजड़ा खुल गया और दो बड़ी पालों की सहायता से तेजी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। नौजवान कुछ देर तक खिड़की से चांदनी रात की छटा देखता रहा, इसके बाद उसने लैंप बुझा दिया और सो गया। कौन है ये नौजवान और क्या वास्ता रखता है वो बटुक चंद के बेटे से? आखिर उसके डूब जाने पर दोनों आदमियों ने उसे क्यों नहीं बचाया? क्या कैमल साहब ये जान पाए कि वो लड़का बटुक चंद का है? ये सब जानने के लिए सुनिए रक्तमंडल का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।